ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಯಾರೇ ಬಾಪ್ ತಾತನಿ, ಇಸ್ ಸೀಜನ್ ಕಿ ಮುರಲಿಯೋ ಮೇ ಸಮಯ ಕೋ ದೇಖತೆ ಹುವೆ ಅಪನಿ ಸಂಪನ್ನತಾ ಕೆ ಆವಾಹನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಹಿ ಹೈ. ಆಜ್ ಆದರಣೀಯ ಸಂತೋಷ್ ದಿದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ್ ಕೋ ಫಾಲೋ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಪನಿ ಸಂಪೂರ್ಣತಾ ಕಿ ಔರ್ ಕಿಸ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸೆ ಆಗೆ ಬಢ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮೇ ತೀವ್ರ ಗತಿ ಕಾ ಆಧಾರ ಕಿನ್ ಕಿನ್ ಬಾತೋ ಪರ್ ಹೈ ಇಸ್ ವಿಷಯ ಕೋ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರೆಂಗಿ ಆದರಣೀಯ ಸಂತೋಷ್ ದಿದಿ.
ಶಾಂತಿ. ಆಪ್ ಯಾ ಜೋ ಭೀ ಬೈಠೆ ಹೈ ಸಬ್ ಮಹಾವೀರ ಹೈ ನಾ ಬಾಬಾ ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ. ಕೌನ್ ಸಿ ಮಹಾವೀರತಾ ಕರ್ತೇ ಆಪ್ ಬತಾಓ, ಕಿಸ್ ಬಾತ್ ಮೇ ಮಹಾವೀರ ಹೋ? ಏಕ್ ವಾರಿ ಸಭೀ ಮಹಾವೀರ ಉಠ ಕೆ ಖಡೆ ಹೋ ಜಾವ್, ದೇಖು ಖಡೆ ಹೋ ಜಾವ್ ಅಪ್ನಿ ಅಪ್ನಿ ಜಗಹ ಪರ್. आप लोग वो महावीरता करते हैं जो सन्यासियों ने, साधुओं ने, महात्माओं ने इम्पॉसिबल कहा कि प्रवृत्ति में रहते हुए, संसार में रहते हुए पवित्र रहना ये इम्पॉसिबल है. आप सभी ने पॉसिबल करके बताया. हाथ ऊपर करो. देखो सबने हाथ ऊपर किया. अब ये जो हाथ ऊपर किया ना, अभी इसको ऐसा करो, खुद को शाबाश दो. हाँ, अभी नीचे बैठ जाओ. अभी सभी की सुस्ती गई, चली गई क्या? है किसी की सुस्ती? क्योंकि मैं 5 मिनट जल्दी आकर के यहाँ पर बैठी तो दृश्य देखा कि नाश्ते का काफी असर हुआ है सब किन किन के ऊपर. अच्छा, अभी सब एकदम चुस्ती से बैठी है. ओम शांति. समय को देखते हुए, समय समाप्ति की तरफ जा रहा है, परंतु बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे समाप्ति के समय का आधार किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? तुम बच्चों के ऊपर. तुम बच्चों को, तुम बच्चों का काम है इशारा देना तो समय संपन्न बन जाएगा. क्योंकि ब्राह्मण बच्चे ही समय की सुइयां हैं जो समय को दर्शाते हैं. तो ऐसी संपूर्ण स्टेज, जिस संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए, बनाने से ही समय भी संपन्न हो जाएगा. और समय की संपन्नता के साथ साथ बाप भी प्रत्यक्ष हो जाए. क्योंकि शिव बाबा हमारा मीठा बाबा सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, परंतु बेहद का बाबा है. बेहद का बाबा होने के नाते हमारा बाबा आ गया. ये एक बारी तो सर्व मनुष्य आत्माओं के मुख से निकलेगा, हमारा बाबा आ गया. जब ये नारा सब लगाएंगे तब समय समाप्त होगा. तो सबके अंदर से ये नारा निकले, मुख से आवाज निकले, दिल से आवाज निकले, उसके लिए हम सब ब्राह्मण बच्चे निमित्त। अभी संपूर्ण स्टेज प्राप्त करने के लिए हम आज तीन बातों का स्पष्टीकरण देखेंगे। एक है अपने पास संग्रह करना, कलेक्शन करना। दूसरा है अपने को करेक्शन करना और तीसरा है कनेक्शन जोड़ना। अभी सबसे पहली बात हम लोग ये देखते हैं कि वैसे तो योगियों के लिए हमेशा कहा जाता है कि तुम्हें किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना, स्थूल चीजों का, क्योंकि संग्रह करेंगे तो उसमें तुम्हारी बुद्धि जाएगी। इसीलिए जितनी आवश्यकता है उतना ही सब साधन अपने पास रखो। साधनों को इकट्ठा नहीं करना है हमको, परंतु साधना को जरूर इकट्ठा करना। तो अभी हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजों का, क्योंकि हरेक को कोई ना कोई ऐसी हाबी होती है, आदत होती है, जो कोई ना कोई क्या करते हैं, किसी न किसी चीज का कलेक्शन कर संग्रह करते हैं। कोई बच्चे आप देखेंगे सब जितने भी देशों के पोस्ट के टिकट है वो इकट्ठे करेंगे, कोई पैसा इकट्ठा करता है, एक जैसा नाना इकट्ठा करेगा, कुछ ना कुछ हरेक को कोई ना किसको कौन सा हो, कौन सी हाबी होती है, किसको कौन सी हाबी होती है। बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चों को अपने पास ज्ञान का संग्रह करना। जितना जितना हम ज्ञान का संग्रह करते जाएंगे, जितना जितना हमारा ज्ञान खजाना बढ़ता जाएगा, जितना जितना ज्ञान खजाना भरता जाएगा, उतना उतना हमारी कमाई होती जाएगी। क्योंकि कहा ही जाता है ये जो नॉलेज है ये इनकम, इससे इनकम होती है, नॉलेज इज इनकम, इससे हमारी कमाई होती है। इसीलिए हमें बाबा की मुरलियों से इतना गहरा प्यार, अध्ययन करने की एक विशेष रुचि ज्ञान का, उसके ऊपर मनन चिंतन करके के अपने जीवन में उसको धारण करके ज्ञान स्वरूप बनने की आवश्यकता। तो जितना जितना हम ज्ञान को स्वरूप में लाते जाते हैं, अर्थात अपना बनाते जाते हैं, तो बाबा को भी ज्ञानी तो आत्माएं अति प्रिय लगती है। तो एक तो हमारा फुल स्टॉक किसका चाहिए, ज्ञान खजाने का फुल स्टॉक चाहिए, क्योंकि आई वेला में हमें ये सब कुछ काम में आने वाला है। दूसरा जो हमें स्टॉक भरना है, संग्रह करना है, इकट्ठा करना है, वो करना है शक्तियों का संग्रह। बाबा के साथ बुद्धि का योग लगा करके अपने अंदर हमको इतनी शक्तियां भरनी है, शक्तियों का स्टॉक इतना फुल जमा करना है, जो समय पर कोई भी समस्या आवे तो उसका हम डट के मुकाबला कर सके। औरों को अगर शक्तियों की आवश्यकता हो तो हमको भी उन शक्तियों का उनको सदुपयोग करा सके। उसके बाद तीसरी बात जो है हमारे को, हमारे पास तीसरी बात की संग्रह जो करना है वो करना है दुआओं का संग्रह, आशीर्वाद का संग्रह। हम जितनी जितनी आत्माओं की सेवा करते हैं, आत्माओं को सुख देते हैं, उतना उतना हमारा दुआओं का स्टॉक जमा होता जाता है। तो जिस समय हमारे ये तीन स्टॉक जमा होते हैं, एक ज्ञान खजाने का स्टॉक, एक शक्तियों का स्टॉक और तीसरा दुआओं का स्टॉक, इन तीनों बातों का स्टॉक अगर जमा होगा तो हमारी पुरुषार्थ की जो रफ्तार है वो तीव्र हो सकती है। कितनी भी बड़ी बातें आएगी तो कभी भी रुकावट नहीं आएगी, हम सहज ही रास्ते को तय करेंगे। अभी हम दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात है खुद को करेक्शन करने की बात, क्योंकि हमें इतना समय से द्वापर से लेकर के औरों को करेक्शन देने की आदत पड़ गई है, हम खुद की तरफ कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण खुद को परफेक्ट नहीं बना सकते। मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे 16 कला संपूर्ण बन के मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, ये जो हमारा ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद की चेकिंग के साथ साथ खुद को करेक्शन करने की आवश्यकता। गीत भी है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का ऐसा आईना दिया है जिसमें हम ब्राह्मण बच्चे अपना मुखड़ा देख करके और अपने को करेक्शन करके परफेक्ट बना सकते हैं। साकार बाबा हमें कहते थे कि बच्चे जब तुम मधुबन में आते हो तुम्हारे पास बहुत समय होता है, क्योंकि यहाँ तुम्हें गोरख धंधा नहीं कुछ नहीं, बाबा की मुरली सुनी, नाश्ता खाया, भोजन खाया, फिर तुम फ्री हो जाते। तो ऊपर आप लोग जो छोटा हिस्ट्री हॉल देखते हैं वो हिस्ट्री हॉल बाबा के समय बना हुआ हॉल है, और उसमें जो राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का जो ट्रांसलेट है वो स्वयं बाबा ने बनवा करके वहां पर एम ऑब्जेक्ट रखी हो। तो बाबा कहते थे तुम्हें जब भी टाइम मिलता है तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर के बैठ जाओ और बैठ करके अपनी क्या करो, उससे भेंट करो, भेंट करके अपने अंदर जो कमियां हैं वो निकालो और अपने को परफेक्ट बनाओ। अभी हम देखते हैं लक्ष्मी नारायण से भेंट करने के पहले आज हम सबके आगे साकार बाबा एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसा एग्जाम्पल है हम बच्चों के आगे, जो बाप के साथ हम अपनी भेंट करके और अपने को हम परफेक्ट बना सकते हैं। इस मार्ग पर चलने का शॉर्टकट जो है, जैसा हम लोग देखते हैं हर एक व्यक्ति को शॉर्टकट अच्छा लगता है, कहाँ भी जाना होगा तो एक दो से पूछेंगे भाई डायमंड हॉल में जाना है, शॉर्टकट कौन सा है वो बताओ, नहीं तो बहुत घूम घूम के आना पड़ता। तो हर एक को शॉर्टकट अच्छा लगता है, तो वैसा ही हमें अपने संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने का शॉर्टकट है फॉलो फादर, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ खुद को करेक्ट करने के लिए, खुद को परफेक्ट बनाने के लिए हमें फॉलो फादर करना। बाबा आज भी कह रहे थे ये जो स्कूल या कॉलेज है ऐसा दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं भी बाप ही बनता है, टीचर भी बनता है और सतगुरु भी बनता है, वो तो है ही इस कॉलेज की विशेषता, स्कूल की विशेषता। पर ये भी बहुत बड़ी विशेषता है जो हमारा सुप्रीम टीचर हमारे को एक बात पक्की कराता है जो कोई टीचर नहीं पक्की कराता, कोई बताएगा क्या है? वो यही पक्की कराता है कि तुम साकार के क्या बन जाओ, कॉपी बन जाओ। आज अगर स्कूल कॉलेजेस में कोई कॉपी करते हैं बैठ करके बच्चे एक दो की नकल करते हैं तो उनको क्या करते हैं, एग्जाम में से उठा देंगे, उनको कुछ न कुछ सजा देंगे, तुम कॉपी क्यों करते हो। परंतु हमारा जो निराकार टीचर है हमको क्या कहता है, तुम सिर्फ साकार की कॉपी करते जाओ, सिर्फ कॉपी नहीं करो परंतु तुम ब्रह्मा बाप की कार्बन कॉपी बनो। कार्बन कॉपी कितनी इजी होती है लिखना, मालूम है ना, सबने पढ़ा है ना स्कूल में। हाँ, कभी कभी हम लोग कार्बन, किसी किसी का कार्बन रख करके कापियां निकालते हैं। कार्बन रखा फिर क्या है, सिर्फ लकीरें मारनी होती है, उसमें कुछ दिमाग चलाने की भी जरूरत नहीं हो। तो वैसा ही हमें बाप समान फरिश्ता बनना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ब्रह्मा बाप की कार्बन कॉपी बननी। तो अभी हम देखते हैं कि हमें ब्रह्मा बाप के कौन कौन से बातों की कार्बन कॉपी बननी। बनना तो सब कुछ है परंतु उसमें भी मुख्य मुख्य बातें आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात है निश्चय। अभी आप ब्रह्मा बाप का निश्चय और अपने निश्चय का भेंट करते चलो, भेंट करके कुछ कमी पेशी होवे तो उसको क्या करो, निकाल डालो। ब्रह्मा बाबा को जिस घड़ी ये निश्चय हुआ, श्री शिव बाबा ने मेरे में प्रवेश किया, बाबा ने मुझे नई दुनिया स्थापना के लिए निमित्त रखा, उसको निश्चय होने में कितना समय लगा बताइए, एक सेकंड। उसको निश्चय होने में एक सेकंड लगा कि सर्वशक्तिवान बाप आकर के मेरे द्वारा नई दुनिया स्थापन करता है। उसने पुरानी दुनिया का त्याग कितने में किया सोचा, ब्रह्मा बाबा ने सोचा, कभी विचार किया, कभी ये भी विचार नहीं किया जब बाबा का उसे डायरेक्शन मिला कि तेरे को ऐसी दुनिया बनानी है, वो दुनिया बनाने के लिए तुझे निमित्त बनना है, इसीलिए क्या करना है, ये पुरानी दुनिया भूलनी। तो एक सेकंड में वो पुरानी दुनिया को भूल करके सर्वस्व त्यागी बन गए। उसने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में क्या किया, तन मन और धन सब कुछ अर्पण कर दिया। किया नहीं किया, इसमें सब एक मत है, हाथ ऊपर करो एक मत है। तो देखो बाबा का पहला कदम त्याग, सर्वस्व त्याग। बाबा ने यहाँ तक त्याग किया, हम आपको बतावे हंसी की बात, जिस दिन से बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया उस दिन से लेकर के बाबा ने कभी पैसा हाथ में नहीं उठाया। कभी कोई जाते थे ना बाबा के पास लेकर के, बाबा ये हमारी बचत है, ये ईश्वरीय सेवा में लगानी है, ये यज्ञ में अर्पण करनी है, बाबा कहता था जाओ जाके सेंटर खोलो, बाबा कभी हाथ में नहीं लेते। एक बारी ब्रिजेंद्रा दादी बताती थी, नया नया ये निकला था, तांबे के पैसे निकले थे, आप लोगों ने देखे हुए ना तांबे के पैसे, तो तांबे के पैसे निकले थे, उसमें भी जो एक पैसा था ना उसमें होल था, देखा है किस किस ने देखा है, बहुत लोगों ने देखा है, पुराने लोग है ना, तो उसमें होल था। तो ब्रिजेंद्रा दादी ने क्या किया, बाबा के साथ हंसी किया, वो बाबा के पास लेके गई, बाबा को बोला बाबा हाथ करो आगे हाथ करो, बाबा ने ऐसा हाथ किया, तो इसने क्या किया बाबा के हाथ पर वो पैसा रख, बाबा ने उसको फेंक दिया उधर। बाबा ने कहा ये क्या स्टो की वाइशल क्यों लेके आई है, तो ये हंसने लगी, बोला बाबा ये स्टो की वाइशल नहीं है, ये गवर्नमेंट ने अभी पैसा निकाला है। तो बाबा ने जिस समय पर ये सुना ना गवर्नमेंट ने ये पैसा निकाला है, बाबा बड़ा गंभीर हो गया एकदम। बाबा ने कहा अरे ये क्या है, शिव बाबा ने हीरे जवाहरातों के महलों का मालिक बनाया और अभी गवर्नमेंट इतनी कंगाल हो गई जो उसके पास पूरा तांबा भी नहीं है पूरा पैसा बनाने की, उसमें भी होल्डर। तो देखो बाबा की दृष्टि देखो, बाबा कितना किस हिसाब से हर एक ज्ञान की बात को कैसा जीवन में उतारते थे और बच्चों को सिखाते थे। तो बाबा ने ऐसा त्याग किया जो ना अपना सोचा ना अपने लौकिक बच्चों का सोचा, एकदम बाबा की जीवनी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। अच्छा, अभी बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उस समय कितने थोड़े बच्चों ने उसको पहचाना, कितने थोड़े बच्चों ने पहचाना, बहुत गिने चुने बच्चों ने पहचाना। और जिस बाबा की इतनी मर्यादा थी, आप लोगों ने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी, बाबा की इतनी मर्यादा थी, जब जवाहरात का धंधा करता था बाबा, तो बाबा के पास राजाएं आते थे, क्योंकि राजाओं को बाबा की जो आंख थी हीरा परखने की वो नंबर वन थी। और बाबा जो ज्वेलरी की डिजाइन बनाता था ना, वो नई नई डिजाइन बनाता था, ऐसी कोई डिजाइन नहीं बनाता था। और ये जो राजाएं थे, इनका एक नियम होता था, ये जिस समय पर इनका दरबार लगता था, हर दरबार में नई ज्वेलरी पहनते थे, पीछे के दरबार की इस दरबार में वो ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, तो इसीलिए उनको नई ज्वेलरी लगती थी। तो ये बाबा को आकर के ऑर्डर देते थे, और बाबा नई नई डिजाइन की क्या करता था, बैठ करके ज्वेलरी बना करके उनको देता। और बाबा की जो फराग दिल्ली, बाबा जो उनकी खातरी करता था, उन लोगों की इतनी मरहबा करता था, स्वागत करता था, तो वो देख करके उनके मुख से ऐसा निकलता था कि दादा ये तो भगवान से बहुत बड़ी भूल हो गई, भगवान ने तो आपको राजा बनाना था, भूल से हमको राजा बना दिया। अभी हम समझते हैं भगवान को उसको राजाओं का राजा बनाना था, तो राजा कैसा बनाएगा। तो जो बाबा की इतनी मरहबा थी, इतना मान था सब, इसमें इज्जत थी। और दादी हमें सुनाती थी, ब्रिजेंद्रा दादी, अगर किसी के पास कुछ अशांति होती थी घर में, व्यापार में या इधर उधर, तो वो लोग, बड़े बड़े व्यापारी लोग, बाबा के पास आके पेड़ी पर बैठते थे, कहते थे दादा हम आपके पास आते हैं ना, हमें बहुत यहाँ शांति मिलती। तो बाबा को इतना मानते थे, परंतु जब शिव बाबा की उसमें प्रवेशता हुई, तो आप सभी को मालूम है कितना अपोजिशन हुआ। जो लोग दादा को देवता मानते थे, देव मानते थे, उन्होंने गालियां देना चालू कर दिया पवित्रता के कारण। कितने सितम सहन करने पड़े उनको, हाँ, कितना उल्टा सुलटा, कितनी गलानी, कितनी निंदा, और डायरेक्ट उसकी। आज देखो, आज कोई समझो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में भी हम कुछ सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा? किसी ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की निंदा किया तो अच्छा लगेगा आपको? किसी को नहीं अच्छा लगता है, अरे ये हमारी बैठ के निंदा करते, इतना अच्छा हम काम करते हैं। परंतु उस समय डायरेक्ट साकार बाबा के लिए कितनी उल्टी सुलटी बातें सारा समाज करता था, पेपरों में डाला, क्या क्या किया, क्या नहीं किया उसके साथ। फॉरेन के पेपरों में भी आया कि कोई एक जवहरी है, उसको एक 16108 रानियां चाहिए, अभी 500 मिली है और इतनी चाहिए, ऐसी उल्टी सुलटी बात। परंतु इतना सब कुछ होते हुए बाबा कभी चलायमान हुआ? बाबा का निश्चय कभी डगमग हुआ कि शिव बाबा तू मेरे तन में नहीं आ, मैं तो फालतू बच गया? नहीं, एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जावे परंतु बाबा का कार्य बाबा को कराना ही है और मुझे करना ही। कहा एक बारी ब्रिजेंद्रा दादी ने बड़ी अच्छी बात सुनाई थी, बोला एक बारी क्या हुआ, सब सब कुछ करके, पिकेटिंग करके, ये वो सब कुछ करके, सब बहुत थक गए, फिर वो पंचों को लेकर के आए, और आकर के पंच भी तो बाबा को बहुत मानते थे, तो पंचों को जब ही लेके आए, आकर के बाबा के सामने बैठे और कहा, दादा आप कितना अच्छा ज्ञान सुनाते, गीता का कितना ऊंचा ज्ञान सुनाते हैं, बहुत कितना जीवन परिवर्तन करने वाला ज्ञान सुनाते हैं, परंतु दादा एक बात करो ना आप थोड़ी सी। बोला क्या बात करें? बोला ये जो पवित्रता की बात बोलते हैं ना, ये आप कट कर डा। बाबा ने कहा ये मैं थोड़ा ही बोलता हूँ, ये तो वो बोलता है ना। अभी भगवान कहे कि काम महाशत्रु है, मैं क्या कहूँ काम मित्र है? ये मेरे से कभी भी नहीं हो, ये मैं कभी भी नहीं बोल सकता हूँ। जो भगवानों वाच है वो सत्य भगवानों वाच है ना, तो मैं कैसा बोल सकूंगा ये? इसीलिए जो बाबा के महावाक्य है, जो बाबा का आर्डर है, वो बाबा ने दिया हुआ है, जिसको करना है वो करे, मैं मना कैसे करूंगा? आप कन्याओं माताओं को बोलो इसके लिए। बोला मैं नहीं बोलूंगा। तो देखो कितनी निर्भयता, कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर खुद आकर के दे रहा है, ईश्वरीय मत में मैं अपनी मत कैसे मिक्स कर सकता? तो हमें ये चेक करना चाहिए कि जितना साकार बाबा का निश्चय, उतना निश्चय हमें बाप के ऊपर है, उतना निश्चय हमको ज्ञान के ऊपर है। निश्चय बुद्धि विजयन, भेंट तो पहले निश्चय की भेंट करें ना हम। एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जावे परंतु ये बाबा का कार्य होकर ही रहना। तो ये जो इतना बड़ा बाबा का निश्चय था, जिसके आधार पर क्या हुआ, सब बाबा निश्चय बुद्धि हुआ, तो बाबा के पीछे बाबा के बच्चे भी निश्चय बुद्धि हुई है। बाबा ने कौन सी परीक्षाएं नहीं दी बताओ? कभी कोई बच्चे जाते थे पार्टियां लेके जाते थे हम, कोई बाबा को कहते थे बाबा माया ना बहुत तंग करती है, बाबा हिम्मत दिलाते थे। बाबा कहते थे देखो बच्चे माया जो है, माया है दुश्मन, तुमने खुद चैलेंज किया उसको, माया तुम आओ, तुम आओ, हम तुम्हारे पर विजय प्राप्त करेंगे, तुमने चैलेंज किया ना। तो जब तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हुए, तो लड़ाई के मैदान में बताओ जब खड़े होते हैं तो दुश्मन किसके ऊपर पहले वार करता है? प्यादों के ऊपर करेगा या महारथियों के ऊपर करेगा, कमांडर एंड चीफ के ऊपर करेगा, किसके ऊपर करेगा? प्यादों को मार के क्या करेगा वो? वो तो उनके जो मुखिया हो गए मिलिट्री में उनको पकड़ेगा ना। तो उसी प्रकार सबसे आगे फ्रंट में कौन है? ये ब्रह्मा बाप इस सेना के आगे फ्रंट में है ना। तो माया के जो भी तूफान आते हैं पहले इसको टकराते हैं। और आपको मालूम होगा अगर तूफान किसी पहाड़ को टकराएगा तो तूफानों की क्या होती है, स्पीड कम हो जाती। तो वो तूफान इसको टकरा करके पीछे तुम्हारे पास आते हैं, ये नहीं घबराता है तो तुम क्यों घबराते? तो देखो बाबा बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए हमेशा खुद का मिसाल देते कि हिम्मत रखो, लड़ाई का मैदान माना निर्भय हिम्मतवान। अगर हमारे पास निर्भयता है तो हम सामना कर सकते हैं। आप लोग समाज में रहते हैं, सामना करना पड़ता है, सामना करने की शक्ति तभी आती है जब निर्भयता होती है। अगर निर्भयता नहीं होगी तो घबरा जाएगी, इसने ऐसा बोला ना, उसने ऐसा बोला ना, इसने ऐसा किया ना, तो घबरा जाएगा, निश्चय ऊपर नीचे हो जाएगा। अरे फालतू फंसे हम तो इस ज्ञान में आकर के, ओ इससे तो पहले हमारे को लोग बहुत अच्छा मानते थे, अभी तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं। अभी वो अच्छा माने या नहीं माने, जो अच्छा मानने वाला है वो जो अच्छा मान रहा है। तो ये चेक करो अपने को कि क्या हमारे को ऐसा कभी संकल्प आता है कोई हमारे लिए उल्टा सुलटा बोलता है? जब हमारे बाबा को कभी संकल्प नहीं आया, हमारा बाबा कभी हलचल में नहीं आया, तो हम क्यों हलचल में आए? क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बताया है ये जो भी परीक्षाएं हैं ये क्या है, ये आगे बढ़ाने के लिए। स्कूल है ना ये, तो स्कूल में क्या होता है, समझो कोई बच्चे पांचवी कक्षा में पढ़ते हैं, उनका परीक्षा होने के बाद उनको चौथी में थोड़ी बिठाते हैं, उनको छठी में बिठाएंगे। पास हो गए तो छठी में बिठाएंगे। तो वैसा ही हमारी जो परीक्षाएं आती है हमको क्या होती है, आगे बढ़ाने के लिए आती। तो क्या हम ये समझ करके चलते हैं? अभी देखो बाबा ने कितनी बड़ी परीक्षा दिया, इतनी बड़ी परीक्षा में दुनिया में कोई पास होकर के बता, सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा जो यज्ञ के ऊपर आई वो आई बेगरी पार्ट की परीक्षा। आज आप खुद घर संभालते, आज समझो घर में कोई होवे या नहीं होवे, व्यक्ति बच्चे होवे या नहीं होवे, जो भी होवे जिसके लिए आप जवाबदार हैं, 350 बच्चे घर में हैं और द्रौपदी का देगड़ा खुड़ 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 कर रहा है, कुछ भी नहीं है उसमें, भोजन बनाने वाली आती है बाबा से पूछती है बाबा आज क्या भोजन बनाना है ही नहीं कुछ, ना आटा है ना दाल है ना सब्जी है। बाबा कहता है 11 बजे पूछना, 11 बजे मनी ऑर्डर आता है, दाल और सब आटा आता है, आटा रोटी पकती है, दाल बनती है, दाल बछड़े वाल खाओ मजा करो भोग लग। बताओ इतनी बड़ी परीक्षा बाबा ने जो दिया, बाबा का कभी निश्चय कम हुआ? बाबा कभी हलचल में आया? रचता है ना, बाप है ना, वो निराकार है और ये साकार। परंतु बाबा की ये बड़ी खूबी रही, बाबा ने कभी भी ये नहीं किया कहा कि ये मेरा है, ये शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा के बच्चे हैं। परंतु माँ का पाठ तो जरूर बजाया, सबको इतना स्नेह दिया, इतना बड़ा किया बच्चों को, परंतु सब कुछ करते हुए भी सदैव न्यारा रहा, सदैव ये बुद्धि में रहा कि करण करावन हार स्वामी करारा। और आज देखो वो बाबा हम बच्चों को गारंटी करता है, शिव भोलानाथ हम बच्चों को गारंटी करता है, अगर तुम घर ग्रस्त में रह के भी समर्पण हो, घर ग्रस्त में रह के भी समर्पण हो बुद्धि से, तो मेरी तुम्हें गारंटी है तुम कभी भूख नहीं मर सकते। तुम तो भूख नहीं मरेगे पर तुम्हारे बच्चे भी भूख नहीं मरेगे, बोलो कोई गारंटी लेगा दुनिया में? है किसी की ताकत ये गारंटी लेने की? तो क्या हमें इतना निश्चय है उसके ऊपर कि अरे भगवान हमारे को गारंटी करता है? जब उसकी ये गारंटी है मुझे संभालने की, मुझे पालने की, परिवार को पालने की भी वो गारंटी उठाता है, तो क्या हम उसके आज्ञाकारी बन के चलने की गारंटी नहीं उठा सकते? उठा सकते या नहीं उठा सकते? कभी कठिनाई हो सकती है आज्ञा ऊपर चलने की? तो ब्रह्मा बाबा को जो शिव बाबा ने किया उसी समय ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, उसको तुरंत प्रैक्टिकल में लाया। करण करावन हार स्वामी करा रहा है, मैं एक न्यारा हूँ, यज्ञ पिता होते हुए, इतने बच्चों का पिता होते हुए, सब कुछ संभालते हुए बाबा को देखो ऐसा न्यारो और ऐसा प्यारा। बाबा को देखते थे बाबा कभी ऐसा लेटे हुए जैसा विष्णु चतुर्भुज लेटा पड़ा है शैया के ऊपर आनंद में, ऐसा विचार सागर मंथन कर रहा है, कोई फिक्र नहीं। चलते चलते कभी सिंध हैदराबाद में बहुत घमसान होता था ना पहले तो पवित्रता के कारण, फिर तो धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तो बीच बीच में वो लोग कर करके कितना करेंगे, थक जाते थे कुछ नहीं करते थे, तो बाबा कहता था क्यों ये क्या हो गया है सिंध वर्गियों को कुछ करते नहीं आजकल, जैसा बाबा उसमें से मनोरंजन करता था। बाबा कहता है ना कोई भी समस्या आवे, कोई भी साइड सीन आवे, साइड सीन किसके लिए देखी जाती? उस दिन भी बाबा ने कहा ना लोग खर्चा करके साइड सीन देखने को जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं? आप यहाँ भी आबू में भी आए होंगे ना, टिकट लेने को जाते हैं, उनको जरा विंडो का टिकट देना ना, क्यों विंडो का टिकट क्यों चाहते हैं? समझते साइड सीन देखेंगे, मनोरंजन होता है। तो बाबा ने ये प्रैक्टिकल करके बताया कि कितनी भी बड़े से बड़ी समस्या हुए, वो समस्या समस्या नहीं है, वो साइड सीन। तो हमारे बाबा ने समस्याओं को साइड सीन करके चलाया, आज हम क्या समझ के चलते? हम समस्या को समस्या समझ के चलते हैं या साइड सीन समझ के हम अपना मनोरंजन करते हैं? भेंट करो बाबा के साथ अपनी, भेंट करने से ही हमारी कमियों की उसके ऊपर भेंट चढ़ती है। भेंट समझते ना, बलि चढ़ना। ये तो भक्ति मार्ग में बेचारे बकरे को बलि चढ़ाते हैं, जो बोल ही नहीं सकते, नए करता रहता। यहाँ बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारे को कोई अपना गला नहीं काटना है, दूसरी कोई बलि नहीं चढ़ानी है, तुमको अपनी कमी कमजोरियों की मेरे ऊपर बलि चढ़ानी है। तुम अपनी कमी कमजोरियों की बलि चढ़ाओ तो फिर देखो तुम क्या बन जाएगे, देवता बन जाएगे, संपूर्ण फरिश्ता बन जाएगे। तो ये प्रैक्टिकल में हमने बाबा को देखा कि कैसे सारा यज्ञ कारोबार करते हुए, सब कुछ संभालते हुए, डबल लाइट, कभी बोझा नहीं। आज थोड़ा भी कुछ होता है, कार्य होता है, उसका बोझा लेके घूमते, अरे मेरे को ना बहुत बड़ी जवाबदारी है, बहन जी आपको क्या मालूम है हमको कितनी जवाबदारी संभालनी पड़ती है। मथा भारी, मथा हल्का नहीं। मथा हल्का क्यों नहीं होता है? फिर ब्लड प्रेशर हो गए, शुगर होगी, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, कारण मथे को भारी करके चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अपने ऊपर उतार लिया ना कि मेरे को करना है। परंतु बाबा की ये बहुत बड़ी खूबी थी, बाबा ने हमेशा अपने को बच्चा समझा। मैं बच्चा, मुर्भी बच्चा, वो भी एक नंबर का बच्चा। निराकार बाबा का उसके ऊपर कितना प्यार, जितना साकार ने निराकार के ऊपर प्यार किया उतना निराकार ने फिर साकार के ऊपर भी प्यार किया कि तुम सब मेरे पोतरे पोतरियां, बाकी एक ही मेरा मुर्भी बच्चा है, लाडला बच्चा है, बस ब्रह्मा ही बच्चा है मैं। कितना आज्ञाकारी, वफादार, फरमांबरदार, कितनी वफादार सजनी बन करके चली। मेरा तो एक बाबा, दूसरा नहीं कोई, बस सदैव बाबा की याद मेरा। और इतना सब कुछ होते हुए, सब कुछ संभालते हुए, प्रैक्टिकल में जो गीता में बताते हैं ना, 16वां अध्याय लास्ट अध्याय, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, तो लास्ट की बाबा की स्टेज क्या, सब सामने होते हुए भी एक सेकंड में उड़ के चला, बाबा की स्मृति में चला। इतना बच्चों के ऊपर स्नेह होते हुए, बच्चों को इतना स्नेह की पालना देते हुए, किसी में भी बुद्धि गई नहीं, बुद्धि एक के साथ ही रही। और शरीर ही बनने का बाबा का शुरू से लेके जो बाबा ने अभ्यास किया, पहले दिन से लेकर के बाबा ने जो अभ्यास किया, वो अभ्यास आप देखो लास्ट में भी बाबा को वो अभ्यास कितना काम में आया, जैसा मक्खन से वार निकल के चला। और पुरुषार्थ में बाबा हमेशा क्या बुद्धि में रखा, जब भी पुरुषार्थ की बात आती थी, पहले मैं अर्जुन हूं, मुझे करना है, जो ओटे सो अर्जुन, मैं अर्जुन। और कोई बात आती थी, पहले बच्चे आप, और बातों में पहले बच्चे, लेने में बच्चे लियो, आप लियो, आप मान लियो, आप नाम, आपका नाम होवे, आपकी शान होवे, और करने में पहले मैं, पहले खुद आगे रहा, जैसा कर्म मैं करूंगा मेरे को देख करके और करेंगे। हम तो प्रैक्टिकल में देखते थे कैसे साकार बाबा कितना ध्यान रखता था, हर एक बात का कितना ध्यान रखता। अभी अभी देखेंगे बाबा यहाँ खड़ा है, अभी अभी देखे उधर गया, अरे उधर गया, उधर गया, कहाँ गया बाबा, बाबा वहाँ आलू की बोरी निकालने को लगा, अरे देखो इसमें खराब होता है, बाबा के यज्ञ का नुकसान नहीं करना, निकालो निकालो, उसकी कैटेगरी बनाओ, फर्स्ट सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड अलग अलग पहले कौन सा खलास करना है सब बाबा सिखाता। तो इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी कितना निरंकारी। मैं बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं। देखो बाप होवे तो ऐसा बाप। तो प्रैक्टिकल में जो दिव्य गुण जिसको कहो ईश्वरीय गुण जिसको कहो वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिखाई पड़े। बाबा ने हर कर्म जो है श्रेष्ठ कर्म वो बच्चों को करके बताया, एग्जाम्पल बन करके बताया, निश्चिंत स्थिति बताई। निश्चय आत्मक बुद्धि का उदाहरण एक जीता जागता हम सभी के आगे खड़ा रहा। देखो दोनों कंबाइंड होते हुए, बाप और दादा दोनों भी कंबाइंड थे ना, दोनों कंबाइंड होते हुए बाबा ने निरंतर याद में रहने का कितना अभ्यास किया। बाबा कहता था बच्चे बाबा को याद करो। अरे मैं भी बाबा के साथ साथ में रहता हूँ पर मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। अब भूलता तो क्या होगा पर हम बच्चों को हल्का कर देता। तुम सदैव भोजन खाते हो ना साथ में, मैं भी ऐसा करता हूँ, बाबा अपना उदाहरण बताते थे, मैं भी ऐसा करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो चलो शिव बाबा हम दोनों मिलके खाएंगे, फिर शिव बाबा भूल जाता है, मैं फिर भोजन में ही लग जाता। तो बच्चे घबरा नहीं जावे, कठिन नहीं समझ ले उस बात को, बहुत इजी बात है, ऐसा होता है भूलते नहीं, फिर मुझे याद कर। तो जैसे छोटे बच्चों को बाप बैठ के कैसा समझाता है वैसा प्रैक्टिकल में हर कर्म बाबा ने हम बच्चों को करके बताए। इकोनॉमी कैसी करनी है ये भी हम बच्चों को बताए, अपने संकल्पों की भी इकोनॉमी करो, स्थूल इकोनॉमी तो करो ही करो पर अपने संकल्पों को भी संकल्पों की भी इकोनॉमी करो, हर एक चीज की कैसे संभाल करो ये भी बताया बाबा ने। कभी कोई कहता था ना बाबा मेरा ना रुमाल गुम गया, किसी किसी को आदत होती है ना जिधर जाएंगे कोई अपनी यादगार छोड़ के आते शायद, कोई रुमाल फेंक के आ जाता, कोई पर्स छोड़ के आ जाता, कोई कॉपी छोड़ के आ जाता, कहेंगे कॉपी कहाँ है, ओ ना मेरी कॉपी उधर भूल गई, फलानी चीज मेरे को उधर भूल गई। ऐसा कोई आता था ना कभी, हम कहते थे बाबा क्या करें ना मेरी ना पर्स ही भूल गई, मेरी पर्स गुम हो गई। बाबा कहता था संभालना एक दिन तुमने गुम हो जाना। सिखाता था बाबा कि योगी का मतलब पंचुअल, योगी का मतलब परफेक्ट, हर एक कर्म उनका परफेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को जो करके बताया, आप अगर बाबा को देखेंगे और उसके साथ अपनी भेंट करते रहेंगे तो जल्दी से जल्दी संपूर्ण बन जाएगी। अभी कितना वर्णन करे बाबा की बातों, बाबा के अंदर शिव बाबा के लिए कितना अथाह स्नेह था। कोई भी चीज हम लेके आते थे, बॉम्बे से ही आते थे, आम लेके आएंगे कहेंगे बाबा आप टेस्ट करो, बाबा कहता था नहीं पहले बाबा को भोग लगे पीछे मैं खाऊं। अभी आप बताओ वो ऐसा कह सकता था ना कि मेरे में ही शिव बाबा आता है, मैंने खाए तो उस समय शिव बाबा भी खा लेगा, नहीं पहले बाबा अपने हाथ हस्तों से निकालता था, अच्छे से अच्छी चीज निकालेगा, वो बोलेगा बच्ची ये बाबा को भोग लगाओ, उसके बाद ही बाबा स्वीकार करेगा। आप अपने से पूछो इतना प्यार हमारा बाबा के ऊपर है, ये रहता है कि हम बाबा जो हमको खिलाता है हम उसको खिला। हर बात बाबा ने बताया, कैसा सोना है, कैसा उठना है, क्या बोलना है, सब कुछ ये करके बताया हम बच्चों। तो हमें खुद को करेक्ट करने के लिए कितना अच्छा उदाहरण हमारे सामने, सिर्फ फॉलो फादर करो और कुछ नहीं करना है, बस ज्यादा झंझटों में जाना ही, कॉपी बनो, ब्रह्मा की कॉपी बनते जाओ। ब्रह्मण माना सिर्फ ब्रह्माचारी नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मण माना ब्रह्मा आचारी, ब्रह्मा बाप का आचरण करने वाले, फॉलो करने वाले माना ब्रह्मण। पवित्रता माना आप सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं समझो, कि हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो हम ब्रह्मा कुमार या कुमारी हो गए, नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ब्रह्मा बाप को, बाप का आचरण करने वाले, माना उसको फॉलो करने वाले, ब्रह्मा आचारी आचरण करने वाले, हर कर्म को फॉलो करने। तो ये है अपने को करेक्ट करने की बहुत अच्छी सहज युक्ति। अभी तीसरी बात हम लोग देखते हैं। तीसरी बात है खुद को परफेक्ट संपूर्ण बनाने के लिए कनेक्शन। हमारा बुद्धि का जो कनेक्शन है वो बाबा के साथ ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी शक्तियां मिलती है, जो भी ईश्वरीय प्राप्तियां होती हैं, वो सब बुद्धि योग बल से मिलती है। बाबा हमेशा कहता है बुद्धि की लाइन क्लियर करो। ऐसा होता है ना, अगर लाइन क्लियर नहीं होगा, समझो टीवी चल रहा है, लाइन क्लियर नहीं होगा चित्र कैसे आते हैं उसके। टेलीफोन में सामने वाला चिल्लाता रहे, हेलो हेलो करता रहेगा, हम भी करते रहे। कोई कोई कहते हैं हम सवेरे उठते हैं ना अमृत वेले, हम बाबा को याद करते हैं, बाबा बोलता है मैं तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। हम बाबा को प्रश्न पूछते हमको जवाब ही नहीं दे। अरे वो देता है पर तुम्हारी लाइन कहाँ क्लियर है, वो तो बोल रहा है सामने, पर तुम्हारी बुद्धि की लाइन अगर क्लियर नहीं तो तुम कैच कैसा करेंगे बताओ, कैच कर ही नहीं सकेंगे ना। बाबा की बातों को, बाबा की प्रेरणाओं को कैच करने के लिए भी क्या चाहिए, बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, उसके लिए माइंड बहुत क्लीन चाहिए, साफ चाहिए। जितनी जितनी हमारी मनसा साफ होती जाती है, जितनी जितनी हमारी वृत्ति साफ होती जाती है, उतनी उतनी हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाती है। जिस बुद्धि की लाइन के द्वारा ही हम बाबा से सर्व प्रेरणाएं लेते हैं, बुद्धि योग बल से हम बाबा से बल लेते हैं, शक्तियां लेते हैं, ईश्वरीय संबंधों की अनुभूति करते हैं, हमारी सर्व प्राप्तियों का आधार ही बुद्धि योग बल। जितना जितना हमारा हमारी बुद्धि बलशाली है उतनी उतनी हमारे को प्राप्तियां। अब अगर बलशाली नहीं है तो प्राप्तियां भी नहीं। तो हमारा निराकार बाप से भी कनेक्शन ठीक होना चाहिए। उसके बाद निराकार बाप से कनेक्शन ठीक है, उसके साथ साथ हमारा साकार में भी आपस में सबका कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ये ईश्वरीय परिवार बड़ा बल देने वाला परिवार, ये ईश्वरीय परिवार मार्ग बताने वाला परिवार है, क्योंकि यहाँ किसी का किसी में स्वार्थ नहीं। तो हमारा अगर आपस में भी स्नेह नहीं है तो हम संपूर्णता की तरफ नहीं जा सकते। एक दो को देख के देखो ये संगठन में क्यों आते हैं आप लोग, एक दो को देख करके उमंग उत्साह आता है, अरे इतने लोग चलते हैं, मैं अकेला थोड़ी चल रहा हूँ, इतने लोग कर रहे हैं मैं भी तो कर सकता हूँ ना, ये कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता, हमारा ब्रह्मा बाप कर सकते हैं तो क्या हम उसके बच्चे नहीं कर सकते। तो निराकार से कनेक्शन ठीक रखते हुए हमारा साकार परिवार के साथ भी सदैव कनेक्शन ठीक रहे, हमारे को रुचि रहे, स्नेह रहे, प्रेम रहे। कभी कभी क्या होता है, चलते चलते जरा दूर होते जाते हैं, फिर पुरानी दुनिया में संबंधियों में उनकी बातों में इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है, इधर थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अरे कहिए आजकल आप सेवा में नहीं दिखते हैं, पहले तो बहुत आते थे, अभी हमने बहुत कर लिया सेवा। अरे तुमको किसने सर्टिफिकेट दिया, किसने कहा तुमने बहुत कर लिया, अभी तो बहुत बाकी है करना, अभी तो बहुत कमाई बाकी है करनी। आप देखो मम्मा बाबा को देखे, ये अंत तक लास्ट श्वास तक कितनी सेवाएं किया उन्होंने। हमारी दादियां, आप जानकी दादी को देखो सामने, इतनी बड़ी आयु में कितनी सेवा करती है, वो बोलती है कि मैंने बहुत कर लिया, वो अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं वेस्ट करती है, वो कहती है नहीं बाबा ने मेरे को ये जो आयु दी है ये किसके लिए दी, सेवा के लिए दिए, कमाई के लिए, कभी अपना एक फालतू बात नहीं कभी बिल्कुल एक सेकंड भी वेस्ट। आप देखते ना सवेरे 3:30 बजे उठ करके यहाँ बैठ कर योग करा, नहीं तो बोले अभी इतना बरस हो गया, उसकी भेंट में तो कोई 10 बरस से आते होंगे, कोई 5 बरस से, कोई 20 बरस से, कोई इन्होंने तो इतना बरस सेवा किया, इतना सब कुछ सेवाएं करके आगे बढ़ाया सबको, परंतु फिर भी कहते हैं हमको लास्ट तक बाबा की सेवा, बाबा के बच्चे, बाबा का कार्य, इसमें बिजी रहे। जो बिजी रहते हो कभी लेजी नहीं होते, पर जो है ही लेजी हो क्या करेंगे, वो तो कहेंगे जो मिलेगा वो चलेगा, जो भी मिला जितना भी मिला ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की दरकार नहीं। हमें बाबा को, बाबा ने जितना मुझे दिया, हमें ये खुद से पूछना चाहिए कि बाबा ने जितना मुझे दिया और जितना दे रहा है, मैं उसके रिटर्न में बाबा को क्या दे रहा हूं, मैं सिर्फ ले ही रहा हूं। अगर हम उसका रिटर्न नहीं कर सकते हैं तो ये भी हमारे ऊपर बोझा चढ़ता है। बाबा आज क्या मेहनत करते हैं, बाबा की एक एक मुरली देखो उसमें कितनी मेहनत, कितनी समझानी है, कितनी शिक्षाएं हैं, बाबा को कितनी लगन है बच्चों को आगे बढ़ाने। कहता है ना मैं तुमको लेकर के ही जाऊंगा और परफेक्ट बना करके लेके जाऊंगा। बाबा ने नहीं परसों भी कहा, दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं वो तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु बाप आकर के क्या करता है, धर्म की तो स्थापना करता है परंतु राज की स्थापना करता है और उस राज में ले जाने के लिए लायक बनाता है। ये काम धर्म पिता ही नहीं कर सकते, ये काम परम पिता ही कर सकते। तो इसीलिए अगर इन बातों का थोड़ा सा विचार सागर मंथन करेंगे, इसके ऊपर आप थोड़ा सा सोचेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा हमारे ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का हमें भी रिटर्न करना चाहिए। और इन बातों में आप जितना जितना रमण करेंगे ना, उतना उतना आपको आनंद आएगा, उतना उतना आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। हमारा समय कभी वेस्ट न जाए, हमारा स्वास्थ्य वेस्ट न जाए, हमारे संकल्प वेस्ट न जाए, सब कुछ सफल करो। बाबा ने हम बच्चों को ये स्लोगन बताया है, सफल करो सफलता पाओ। तो अगर मुझे सफलता सचमुच पानी है, जबरदस्ती नहीं है, जिसको जो बनना है वो बने, ऐसा नहीं कि हमारे द्वारा अगर बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो बाबा गुप्त ही रह जाएगा और विनाश हो जाएगा, नहीं, हमारे द्वारा नहीं हुआ तो औरों के द्वारा होगा, पर हम तो रह गए ना, हम तो पीछे रह गए, नुकसान किसका हुआ, मेरा हुआ ना। इसीलिए मुझे बाप समान बन करके, बाप को फॉलो करके और बाप को प्रत्यक्ष करना, ये मुझ आत्मा का कर्तव्य है। तो जब भी हम ये पक्का करते हैं ना, ये मेरा कर्तव्य है, ये काम मेरे को करना है, जब मेरे को करना है तो करके ही बताना है, जैसा ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बन के ही बताया, हाँ मम्मा ने संपूर्ण बन के बताया, दादी ने, प्रकाशमणि ने हम लोगों को बन के बताया ना, मेहनत किया अपने ऊपर, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। सारी मेहनत अगर हमारा ध्यान है, अपने पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है, तो अटेंशन देने से हमारे अंदर क्या होती जाती है, करेक्शन होती जाती है, करेक्शन करके हम परफेक्ट बनते जाते हैं। और जैसा ये हमने आपको बताया, बाबा के साथ हमारा कनेक्शन ठीक चाहिए, ईश्वरीय परिवार से आपस में कनेक्शन ठीक चाहिए, वैसा मेरा मेरे साथ भी कनेक्शन ठीक, मेरा मेरे साथ कनेक्शन ठीक, माना मेरा आदि और अनादि जो स्वरूप है उसके साथ मेरा कनेक्शन ठीक चाहिए। मेरा आदि स्वरूप क्या है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और अनादि स्वरूप मेरा क्या है, मैं आत्मा कौन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ, ये जो मेरे गुण है उसके साथ मेरा कनेक्शन ठीक रहे, अर्थात वो मेरे अंदर आता रहे। नहीं तो क्या होता है, जो सृष्टि के मध्य के संस्कार है वो याद रहते हैं, उसके साथ कनेक्शन जुटा रहता है, अंत वाला जो है उससे कनेक्शन जुटा रहता है। नहीं, आदि और अनादि संस्कारों से और अपने स्वरूप से अगर हमारा कनेक्शन है तो हम जल्दी से जल्दी क्या बन जाते हैं, परफेक्ट बाप समान बन जाते हैं। तो बाबा इसीलिए कहता है कि बच्चे तुम समय की घड़ियां हो, तुम्हारे को लोगों को बताना है कि अब समय पूरा हुआ। कभी कभी ऐसा करते हैं ना, अरे बहुत समय, अभी इतना समय हो गया, दूसरे को देखेंगे ना, इतना समय हो गया, अभी इतने समय में ये ही नहीं बदला है, मैं कहां से बदलूंगा। ये ऐसा पुरुषार्थ इनकी बात नहीं करना, कोई बदले या नहीं बदले मुझे बदलना है, कोई करे या नहीं करे मुझे करके बताना है। जब ये लगन हमारे अंदर होती है तभी हम तीव्र पुरुषार्थी बनके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य ये है कि और किसी को भी देखो नहीं, सी फादर फॉलो फादर। बस हमेशा जो देखो रेस में दौड़ते हैं उनका ध्यान कहाँ होता है आपको मालूम है? आप दौड़ के देखा है नहीं देखा है? जब रेस में दौड़ते हैं तो उनका सामने लक्ष्य की तरफ ध्यान होता है, सामने ध्यान होता है, इधर नहीं देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। तो हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है, फरिश्ता सो देवता, हमारे आगे कौन है, हमारे माता पिता, तो दौड़ो उनके पीछे। इधर इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं कभी कभी हंसी में बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ देखो बाबा पहले कहता था बच्चे तुम आप समान बनाओ, आप समान बनाओ, फिर बाबा ने देखा डिफेक्टिव माल निकलना चालू हो गया, क्योंकि हमारे में जो कमी होगी हम आप समान बनाएंगे तो उनमें भी वो कमी आ जाएगी। अभी बाबा ने स्लोगन ही बदली कर दिया, आप समान नहीं बाप समान बनाओ, जिसको भी बनाना है उसको कैसा बनाओ, बाप समान बनाते जाओ, क्योंकि बाप तो परफेक्ट है, बाप में तो कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए हम सभी को क्या करना है, बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, समय को समीप ला करके समाप्ति पुरानी दुनिया को करके नई दुनिया में जाना है। ओम शांति।